नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो उवर्छायारं नमो शतपथवाहुरं मङ्गलं गौतमङ्गलं मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो सुन्दरमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सदानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं तेन भुवनमेतात् पीतराकविज्ञानता शिवस्वरूपशिवकार हम छेदाला की तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंदर हम सात तत्वों के स्वरूप पर वर्णन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सात तत्वों की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस पर अभी तक हमने जीव और जीव तत्व की चर्चा कर ली थी और लास्ट क्लास में हमने आश्रव तत्व की चर्चा और बंध तत्व की चर्चा उठाई थी। उसमें हमने देखा था कि आश्रव और बंध ये कैसे होता है, इसका साइंस क्या है। तो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे कि हम घर पर दुनिया में कुछ भी करते हैं, फ्रिक्शंस, यहाँ पर भी कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा बनता है, वहां पर अट्रैक्शन होता है, हम खींचे चले जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट होती है, उस इलेक्ट्रिक मैग्नेट में व्हेन वी फ्लो द करेंट तो उसके कारण वो उस आयरन को अट्रैक्ट कर पाती है। ऐसे ही हमने वो एग्जाम्पल जब हम बचपन में करते थे, वो छोटे छोटे कागज के पीसेस को कर देते थे और उसके ऊपर से हम स्केल को अपने बालों में रब करके ले जाते थे तो वो उसमें चिपक जाते थे, बिकॉज देर वॉज अ चार्ज दैट वॉज क्रिएटेड। सिमिलरली आत्मा के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, उन प्रदेशों में जब कंपन होता है वो रोटेट करते हैं, वो पूरा घूमते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन देयर इज अ काइंड ऑफ फील्ड दैट इज क्रिएटेड, दैट अट्रैक्शन जो कार्मिक डस्ट को अट्रैक्ट करता है और उसके कारण कर्म आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये कहलाता है आश्रव। इस पर से कोई अभी लास्ट क्लास में कोई था आप लोगों में से कोई क्वेश्चन या इसमें एलेबोरेट करूं मैं? एनीवन?
I'm okay.
तो दो प्रकार की चीजें होगी।
क्या प्रश्न पूछा आपने?
मैं पूछते तो आप लोगों को कोई पिछली बार हमने जो थोड़ी सी चर्चा करी थी, किसी को उसमें कोई डाउट है या फिर मैं वापस उसके बारे में चर्चा करूं? हाँ
असल तत्व किया था ना लास्ट टाइम तो? नहीं, अच्छा अच्छा समझ
हाँ
गए।
हाँ हाँ सो उसमें दो चीजें हैं, एक योग है एक कषाय है, राइट। योग योग का सीधा काम बाहर से, इसका जो पूरा जितना व्यापार है वो मन वचन काय तीन चीजों से है। हमको शरीर मिला, ये हमारा काय योग है। हमारे पास बोलने की शक्ति हुई, ये वचन योग है। और मन में हम सोच पाते हैं, ये मन योग है। इनके दो दो पार्ट है, एक द्रव्य मन एक भाव मन, एक द्रव्य वचन एक भाव वचन, एक द्रव्य काय एक भाव काय। हम ऐसा समझते हैं, उसको समझने के लिए हम दे रहे हैं। जो बाहर में आपको बॉडी दिख रही है ये काय योग बाहर की फिजिकल बॉडी है, एंड आत्मा में जो काया की योग्य शक्ति है ये वाली, ये आत्मा का भाव काया योग हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने अपना हाथ मूव किया, तो जब हाथ मूव हो रहा है उसी के टाइम पर वहां पर जो आत्मा के प्रदेश है वो भी मूव हो रहे हैं। तो इन हाथ की मूवमेंट पे आत्मा के प्रदेशों में मूवमेंट होता है, उसके कारण वहां कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण आसपास की कार्मिक डस्ट है, जो कर्म परमाणु है वो आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये आकर्षण जो होता है, दिस इज एन इनविटेशन टू कर्म. ये हमने एक आमंत्रण दिया है, एक इनविटेशन दिया हुआ है. जैसे कि हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होगा, हम इनवाइट करेंगे किसी को. सो वी मेंशन टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज, हम आपको बुला रहे हैं, तो पहले किसको बुला रहे हैं, किस फैमिली को बुला रहे हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं किन किन को बुलाना है, राइट. एंड उन उन में से भी लाइक, इज इट लाइक होल फैमिली वी आर कॉलिंग, और लाइक यू नो स्पेसिफिक पीपल. आप पूरे परिवार के साथ आए हैं या फिर आप सिर्फ अकेले आए हैं, राइट. दो तीन चीजें होती है. ऐसे ही जब आत्मा में योग शक्ति चलती है, आत्मा के प्रदेश में कंपन होता है, तो इन्विटेशन भेजता है. और इन्विटेशन दो प्रकार का होता है. फर्स्ट, कौन कौन आएंगे, लाइक हु ऑल टू इन्वाइट. सेकेंड, कितनी क्वांटिटी में आएंगे. आप लोग चार फैमिली मेंबर हो तो सिर्फ एक को बुला रहा हूँ कि मैं ऑल द फोर और ओनली एडल्ट्स आर इनवाइटेड, नॉट द किड्स, लाइक ऐसे करके. तो दो प्रकार से इन्विटेशन हुआ. कौन कौन से प्रकार से. वन इज कितने आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रदेश बंद. कितने प्रदेशों में बंद होना है कर्म परमाणु का, इन हाउ मेनी क्वांटिटी जो प्रदेश हो रहे हैं. और दूसरा है प्रकृति पर, कौन कौन से लोग आने वाले हैं. तो ज्ञानावर्णी में से कौन से आएंगे, दर्शनावर्णी में किस कर्म का आना है, मोहिनी में ताता वेदनी में सात आना है, नाम कर्म में कौन सा, प्रशस्त कर्म आने, अप्रशस्त कर्म आने. तो दो प्रकार के नाइट्स गए. फर्स्ट इज टू द कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन कौन सी फैमिलीज को जाने कर्मों की. तो हमारा योग होता है एक, इन्विटेशन भेजता है दो टाइप से. वन, कौन कौन सी प्रकृतियों को आना है एंड कितनी कितनी क्वांटिटी में आना है. सो दैट इज प्रकृति बंध एंड प्रदेश बंध. इट्स द सोल इनवाइट गिवन बाय द योग. आपने योग किया, कर्म अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझको इन्विटेशन मिला है एंड दिल कम. ठीक है, बराबर. योग के कारण दो प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध एंड प्रदेश बंध. प्रदेश इज द क्वांटिटी, कितने सारे कर्म आ रहे हैं. प्रकृति इज द कैटेगरी, कौन कौन से कर्म आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रकृति आ रही है, आपने किन किन को इन्वाइट किया है. ठीक है, यहाँ की जो कहानी है, इस कहानी से जीव को कोई दिक्कत नहीं है. जब तक ये वाला बंध चल रहा है, प्रकृति बंध प्रदेश बंध एंड योग का प्रवाह, तब तक आत्मा हैज नो प्रॉब्लम. क्योंकि यहां तक अगर हम डेंजर जोन में नहीं आए हैं. ये अरिहंत भगवान के भी होता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी, उनके प्रदेशों में कंपन होगा, तो उनको भी कर्मों को इनवाइट जाएगा, प्रकृति में जाएगा, और कितने कर्म आएंगे वो इनवाइट जाएगा. बट द प्रॉब्लम कम्स कि मैंने इनवाइट दे दिया कि हमारे यहाँ शादी है, प्लीज आप आइए और आप सब परिवार आइए, यू कम विद फैमिली. ओके, सो नाउ यू केम ऑन द डे ऑफ द वेडिंग. But now when the wedding day arrives, there is no one who is even able to recognize you. आपको कोई पहचान ही नहीं रहा है, आपसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है. आप आ गए, nobody is even asking like कैसे रहा, क्या रहा, अच्छा आप आ गए, कोई परेशानी तो नहीं हुई. So nobody is like, everybody is like, you know, not even recognizing you. So now अब आपको कैसा लगेगा, you feel a little insulted, like you called me, like you told me to come with family and now you're not even, you know, recognizing as if I was not even invited. So फिर आप वहां पर ज्यादा देर तो नहीं रुकेंगे, ज्यादा देर क्या, आप शायद नहीं ही रुके, राइट. आइडियली सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग नहीं करते ऐसा. सो टू थिंग्स हैपन, एक आपको इन्वाइट मिला, एंड सेकेंड जब आपको इन्वाइट मिला इन द डे केम द वेन्यू, जब आप वहां पर पहुंचे, तो आपकी मेजबानी करने के लिए आपकी क्या बोलते हैं इसको,
नॉट वेलकम, यू डोंट वेलकम देम,
यू आर नॉट वेलकम. तो आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पर पास जो आपकी अगवानी करेंगे वो होती है आपकी प्रशाएं. तो हमने कर्मों को इनविटेशन दे दिया, कर्म आ भी गए. जब वो आए तब उनको पता पड़ा कि यहाँ पर तो कषायों का अभाव है, ये तो अनंत चतुष्टय में विराजमान अरिहंत परमात्मा है. तो उनको कोई वहां पर उनको वेलकम करने वाला नहीं मिला. तो ये कर्म आएंगे और आके सीधे चले जाएंगे. देयर इज ओनली योग, there is no kashaya to entertain the karmas that are incoming. Therefore, there will not be any bandha. This is called Iryapat Ashram. Iryapat Ashram, which ashram is? In that ashram, where the yogas of the karmas ka aana to hota hai, lekin kashayon ke karan karmo ka thehrna nahi hota. Ek kashayon ke abhav mein. So kashay nahi hai, so there is no one to stop the karma. Theek hai? But on the contrary, main aaya aapke ghar, like shaadi mein aap aaye, aap se bahut acche se pucha ja raha hai. Everything, like sab excellent facilities mein aapko bahut acche se respect di ja rahi hai, pucha ja raha hai. So you're liking. So you thought ki theek hai, thoda pehle ek wedding ceremony hai. Uske baad like dopahar ko fere honge, shaam ko reception hoga, so we'll just attend pehle ka jo ring ceremony ho and then we'll come back. Theek hai, aapne aisa decide kiya hoga. But the behavior was so good ki aapko laga nahi yaar hum to aur ruk sakte hain. Theek hai, chalo itna acha chal raha hai, sab itna acha se behave kar rahe hain, so why don't we like you know spend more time. So ab pehle aapne jab mejbani nahi kari thi the karma went by. Now yahan par kuch aur hoga. अब जब कर्म हमारे पास योगों ने जब उनको इन्वाइट किया तो कर्म प्रकृति प्रदेश बन के साथ हमारे पास आए. हमारे पास कषाय थी, कषाय ने इनकी मेजबानी करी. तो दो क्वेश्चन अराइज हुए, आपकी मेजबानी हुई है अच्छे से हुई है या बुरे से हुई है, कर्मों को कैसा लगा ये हम आपसे पूछना पड़ेगा. आर यू फीलिंग नाइस और नॉट. तो कर्म उसको दो तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं. वो पहली चीज बताते हैं कि ठीक है आपने बहुत अच्छे से हमारी मेजबानी करी, तो वी गिव अ ड्यूरेशन. हम आए थे सिर्फ लंच करने के लिए, बट अब हम शाम तक के लिए रुकेंगे और पूरी रिसेप्शन को देख के जाएंगे. तो स्थिति बंध कहलाता है. कर्म कषायों को देख के नाउ डिसाइड करते कि हमें कितने टाइम तक यहाँ पर रहना है. योग ने ये नहीं बताया था कि कर्म को कब तक रहना है. योग जस्ट टेल के आप आइए हम देख लेंगे क्या अरेंजमेंट होता है. बट जब कषाय इनको मिली सो लाइक कषाय से मिलकर कर्म इतने ज्यादा खुश हुए और बोला ठीक है भैया हम इतने टाइम तक रहेंगे. एंड देट टू अब कई लोग होते हैं ना लाइक जब कुछ ऐसे सेरेमनी होती है सो दे यू नो ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग यू. वो आपसे और अच्छे से बात करेंगे या फिर वो काम बिगाड़ने लगेंगे. राइट, ऑल टाइप ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन वेडिंग्स. राइट, सिमिलरली दूसरा एक ट्विस्ट कर्म के साथ है कि हम इतने टाइम तक रुकेंगे. राइट, एंड रुकेंगे तो हम शांत नहीं रहेंगे, हमारी कुछ इंटेंसिटी होगी. इसको अनुभाग बंध कहते हैं. राइट, सो अनुभाग है इसके लिए. कुछ होते हैं हमारे रिश्तेदार जो एकदम ठीक है सब आराम आराम से सब कर लेते हैं, आप उनको ज्यादा नहीं भाव पी दो तो भी आराम से कुछ नक्श वगैरह कुछ नहीं निकालते, कोई बुराइयां नहीं करते. देयर गुड एंड कुछ ये कि आप जितना भी कर लो उनको करना है तो करना है, बोलना है तो बोलना है. राइट, सो दिस इज व्हाट अनुभाग बंध है. तो कर्म आएंगे, आपने इन्वाइट सब कर्मों को दिया था, कषाय जैसी उनको मिली वैसा उन्होंने अपनी कंफर्ट के हिसाब से हम तो इतने दिन रुक सकते हैं, उतने दिन को उन्होंने प्लान बनाया. दैट इज स्थिति बंध. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम उन्होंने ये प्लान भी बनाया कि मुझे रहना है तो कैसे रहना है, हाउ डू आई हैव टू बिगिन. राइट, सो अनुभाग बंध इज लाइक आपको लेट से सिर दर्द के कर्म आ गए, वो रुक गए एंड आपको सिर दर्द के कारण आपको लाइक लास्ट वन ईयर से प्रॉब्लम है, आपको तीन चार दिन में अपने आप होने लगता है. बट किसी को ऐसा भी होता होगा सिर दर्द कि कभी रेयरली एक दो बार होता है, बट ऐसा होता है कि वो पागल हो जाता है, कैन नॉट बियर इट. ठीक है, तो होता उसको बहुत कम टाइम के लिए. सो स्थिति इज टू शॉर्ट. ये रिश्तेदार आए बहुत कम समय के लिए, लेकिन जितनी देर के लिए आए वो उतना में ड्रामा बना के चले गए. राइट, सो दे केम फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, उनकी स्थिति कम थी बट इम्पैक्ट अनुभाग बहुत ज्यादा था. और या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमेशा बैकग्राउंड में सिर दुखते ही रहता है, लेकिन माइल्ड हेडेक इज ऑलवेज देयर. सो इट्स स्थिति इज लॉन्गर बट अनुभाग इज वेरी स्मॉल. वो बहुत कम फल देता है, बहुत कम दर्द आपको हो रहा है, यू कैन बियर इट. राइट, तो चार प्रकार के बंद हो गए. योग के कारण दो चीजें डिसाइड हुई, कितनों को इन्विटेशन देना है और कौन कौन सी कैटेगरी वाले होंगे वो, लाइक कितनी क्वांटिटी में आएंगे और वो कौन कौन है, आठ कर्मों में से कौन कौन से कर्म आने वाले हैं. दैट वॉज द इनवाइट गिवन बाय द योग. हमने जो मन से बोला, सोचा, मुंह से बोला, हाथ से एक्शन किए, उससे कर्मों को सिग्नल मिला, उनको एक ऑर्डर मिला, लाइक से इट्स अ पीओ, परचेज ऑर्डर जनरेटेड. सो नाउ दैट ऑर्डर हैज बीन गिवन टू कर्मा, द नेक्स्ट सेम मोमेंट द कर्मा वुड विजिट योर सोल. अब वो जब देखेंगे इंस्पेक्शन में जिनको मेजबानी करने वाली कोई कशाएं मिलती है, सो अगेन टू थिंग्स विल हैपन, टू डिसीजंस विल हैपन. आउटराइट कर्माधर सो स्मार्ट, वो तुरंत डिसीजन ले लेंगे, हाँ मुझे इतने टाइम तक रहना है और मैं इतना फल देके जाऊंगा. सो दैट इज टाइम तक रहना, दैट इज स्थिति बंध. एंड कितना फल देने की उनकी शक्ति है, कितना इंटेंस वो होगा, दैट वुड बी अनुभाग बंध. चार प्रकार के बंध जिन आगम में माने गए हैं, जिनकी ओरिजिनेशन दो चीजों से होती है, योग और कषाय. योग के कारण स्थिति सॉरी प्रकृति प्रदेश बंध, इन कषाय के कारण स्थिति अनुभाग. किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर? एनी क्वेश्चन? Nobody has any question.
अनुभाग जो आपने बताया वो थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे.
अनुभाग क्या लिखे
वो नाम मैंने तो सुना है, जैसे ही सुना अनुभाग नाम.
अच्छा,
और प्रकृति बंध में तो वो तो कर्म अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं ना.
करेक्ट, यस.
उसमें कुछ फॉर्मूला के वैसे कुछ गणन योग में आता है कि कैसे वो कहाँ कितने डिवाइड होते हैं क्या वैसा कुछ?
नो, ऐसा नहीं है उसमें. इसमें ये है कि आपको सात कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है, हमें सात कर्म निरंतर बनते हैं. सात कर्म, हाँ.
आयु तो कभी ही बनता है ना,
आयु आयु कर्म आयु के त्रिभाग में बनता है. उसके अलग अलग स्थान होते हैं, वो सारी सिचुएशन वो सारी कंडीशन जब कंप्लीट होती है तभी आयु कर्म बनता है. ठीक है, त्रिभाग में एक बार नहीं बनता तो फिर वापस जिसमें रिमेनिंग आयु उसका त्रिभाग होगा, या फिर आखिरी में जाके मरण के अंदर मुहूर्त में होगा. वो एक हो गया, बाकी सात कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है. कैसे चल रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे कि हमने खाना खाया तो खाना सेम है. The food is same, but the same food will make blood, the same food will make flesh, the same food will make aapke bones ko strong banayega. To khana ek hai, lekin apne aap wahi khana kuch to khun ban jata hai, kuch maans majja ban jati hai, kuch hadiya ban jati hai, kuch waste nikal jata hai, right? So the same, similarly, ek kashaya parinam hai, us kashaya parinam se automatically अलग अलग कुछ हमारे शरीर के नाम कर्म बन जाते हैं, कुछ वेदनीय कर्म बन जाते हैं, कोई ज्ञानावली दर्शनावली मोहिनी अंतराय हो जाते हैं, कोई गोत्र बन जाता है, एक ही है. तो यहाँ पर देखिएगा, निमित्त इज वन, वन निमित्त इज वॉट, हमारा परिणाम, हमारा कषाय परिणाम और योग का परिणाम, राइट. तो एक योग के परिणाम के कारण अलग अलग तरीके से कर्म आए, और कषाय के कारण वो अलग अलग तरीके से उनकी स्थिति और अनुभाग बनाएगा बनेगा, राइट. यदि उस योग के कारण या फिर कषाय के कारण कर्म आते हो या बनते हो तो सात कर्म क्यों आएंगे, एक ही क्वालिटी के आने चाहिए ना. क्योंकि एक निमित्त की साक्षी में फिर एक से ही काम होगा, राइट. लेकिन काम सात अलग अलग हो रहे हैं फॉर द सेम निमित्त, इट मीन्स कषाय और योग के कारण कर्म नहीं आते, कर्म अपनी योग्यता से आते हैं. बट द टाइम पीरियड ऑफ कर्मों की इनकमिंग एंड कषायों की हैपनिंग दैट इज द सेम. ये कहा जाता है कि कषाय के कारण कर्मों का आना हुआ.
एक एक क्वेश्चन मुझे यहाँ है कि वो कर्मण वर्गणा, बस वो क्या है कि कर्मण वर्गणा है, वो कर्म रूप परिवर्तन होती है जब वो योग के हिसाब से एक क्षेत्र में आती है तो कर्म रूप परिवर्तन होता है. तो मगर वो कर्मान वर्गणा भी डिफरेंट, ये आठ प्रकार की होगी कि वो कर्मान वर्गणा एक टाइप की है मगर वो उसका परिवर्तन, उसका परिणाम परिवर्तन आठ प्रकार से होता है.
कर्माण वर्गणाओं में कोई नाम नहीं होता कि ज्ञानवर्णी की कर्म वर्गणा है कि दर्शनवर्णी की कर्म वर्गणा है. दे आर जस्ट अ रॉ मटेरियल, वो सारी वर्गणाएं हैं, ठीक है. उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, डिस्टिंक्शन तब तक नहीं होता जब तक आप परिणाम नहीं करते, राइट. तो मैं अभी इस जगह पर बैठा हूँ, मैंने मन में एक परिणाम किया, तो मेरा मनोयोग का कंपन हुआ, मनोयोग का कंपन हुआ तो आसपास जो एक सी कर्म वर्गणाएं हैं उन्हीं कर्म वर्गणाओं में से ऑटोमेटिकली कुछ कर्म वर्गणाएं ज्ञानवर्णी कर्म रूप परिणमित हो जाएंगी, कुछ दर्शनावर्णी, कुछ मोहिनी, कुछ अंतराय, ऑटोमेटिकली। सेम रॉ मटेरियल इट मेक्स एट काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस अपनी अपनी योग्यता से। कर्म वर्गणाओं कैसे नहीं आते कि ज्ञानावर्णी वाला रॉ मटेरियल ये है, दर्शनावर्णी वाला रॉ मटेरियल ये है। नो, कर्म वर्गणा सेम, अपना समय पाकर अपनी योग्यता से कुछ कर्म वर्गणा ज्ञानावर्णी कर्म रूप, कुछ दर्शनावर्णी कर्म रूप, इन सब रूप वो परिणमित होकर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा अनुभाग बंध का। अनुभाग बंध यानी कि इंटेंसिटी, लाइक जैसे कि अभी गर्मी, लेट से इट्स वेरी हॉट, ठीक है, बहुत गर्मी है, तो आपने देखा होगा हम चार लोग बैठे हैं तो किसी को शायद ऐसा होता है कि किसी को सेम टेम्परेचर है, किसी को बहुत गर्मी लगती है, किसी को थोड़ी कम लगती है, किसी को बहुत पसीना आता है, किसी को कम आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता। टेम्परेचर इज सेम फॉर एवरी वन, राइट, बट ऐसा क्यों हो रहा है फिर कि किसी को यदि एसी चल रहा है तो किसी को ठंड लगने लगती है, किसी को नहीं लगती है, कोई कहता है एसी को कम टेम्परेचर बढ़ाओ, कोई कहता है कम करो। सेम टेम्परेचर, व्हाई डू वी हैव अलग अलग, उसी में किसी को कुछ और पसंद है, उसमें किसी को कुछ और कंडीशन लगती है, व्हाई सो? कभी कभी आपका पेट दर्द बहुत तेज होता है, कभी कभी थोड़ा कम होता होगा, कभी हेडेक बहुत एक्सट्रीम होता है, कभी कम होता है, ये अनुभाग है। कर्म का जितना अनुभाग होगा उतना तीव्र उसका उदय होगा, राइट। तो कभी आपका बहुत तेज पेट दुख रहा है मतलब कर्म का उदय वही है, पेट असाता वेदनीय का, लेकिन अनुभाग उसका बहुत तीव्र है, शायद वो 5 मिनट के लिए चले, लेकिन 5 मिनट में वो इतना तेज दुखेगा कि आप उसको सही नहीं कर पाओगे। या फिर कभी 1 घंटे तक दिन भर से दुख रहा हो लेकिन अनुभाग कम है तो यू नो यू आर समहाउ बियरिंग इट, आप सहन कर रहे हो। तो ये अनुभाग ये होता है। क्वेश्चन किसी को, आपको मतलब सेम एनवायरमेंट में किसको गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंडी ज्यादा लगेगी, ये सब अनुभाग का है। कोई क्वेश्चन है इसमें?
परंतु यहाँ मैं ये सोचती थी आपने बोला गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंडी ज्यादा लगेगी, तो विंटर में हमको बहुत ठंडी लगती है तो तभी हमारा कर्म का अनुपात बहुत होता है।
लेकिन सोचने वाली बात है ना, जब हम सब सेम टेम्परेचर में हैं तो किसी को कम ठंडी लगती है, किसी को ज्यादा, ऐसा क्यों? इवन कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है, तो आई आस्क व्हाई बॉडी का क्यों, बॉडी तो उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जो अंदर इन्वायरमेंट में।
तो वहाँ पे बॉडी का कोई प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, ये अनुभव समझना चाहिए वहाँ पे।
मेरे को बता, बॉडी का भी प्रॉब्लम रहेगा किसी का, लाइक बॉडी की किसी की सीथ होती है, किसी की मतलब इसको नसीर बोलते हैं, तो किसी की बॉडी को मतलब नसीर उसकी कोल्ड रहती है तो उसको ठंडी चीजें ज्यादा सूट करती हैं, कोई गर्म नसीर वाला, तासीर बोलते, सॉरी नॉट नसीर, तासीर, बॉडी की तासीर गर्म होती है, राइट। तो आयुर्वेद में पहले बहुत चलता था, आजकल तो एलोपैथी ने सब बर्बाद कर दिया है, बॉडी की कुछ साइंस उसको पता नहीं है, लाइक सबके लिए सेम दवाई है, आयुर्वेद में सेम दवाई नहीं होती, फॉर द सेम डिसीज दो अलग अलग लोगों के लिए आयुर्वेद में अलग अलग दवाई बनती है, क्यों? क्योंकि बॉडी की तासीर अलग है। जैसे कि आपकी बॉडी की तासीर गर्म है और मैंने आपको ठंडी वाली दवाई दे दी तो आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बीमारी वही है, उसी बीमारी की दवाई है, लेकिन आपकी बॉडी ठंडी चीजों को नहीं ले पाती, और मैंने आपको दवाइयों में वो वाली चीजें डाली जो ठंड करती है। दैट इज द बिगेस्ट यू नो जो अभी एलोपैथी है इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि बॉडी को नहीं समझती है, ये जस्ट केमिकल लैंग्वेज समझती है, ये बोलती कि वाला केमिकल बढ़ रहा है तो वाले केमिकल का रिएक्टेंट ये है, आप ये वाला केमिकल दे दो। सो वी आर टोटली डीलिंग विद द केमिकल, दे आर नॉट इवन लिसनिंग व्हाट बॉडी इज सेइंग, एंड दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ एलोपैथी। बहुत बड़ा जहर है जो हम लोग के जीवन में आ गया है, इट्स अ बिग बिजनेस एक्चुअली, इट्स नॉट इवन लाइक लाइफ साइंसेज, इसको मतलब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज भी नहीं किया जा रहा। इसको तो एक फार्मास्यूटिकल इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी उसकी लॉबीज है, इतनी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च पे जा रहे हैं, दे आर जस्ट अर्निंग, दैट्स द होल बिजनेस मॉडल नाउ। आयुर्वेदिक वॉज अ ग्रेट साइंस दैट वी हैव लॉस्ट, और ये हम लोगों की लाइक यू नो शॉर्ट साइटेडनेस थी कि हम लोगों ने उसको जाने दिया इंडियंस, राइट? सो नाउ
इंडिया में भी कम हो गया अभी,
लाइक किसी ने उसको पढ़ने की उपयोगिता ही नहीं समझी ना, नाउ एवरीबडी रियलाइजिंग द ग्रेट मिस्टेक। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी इंडिया में, बट लाइक यू नो एक वो इतनी बड़ी लहर आई कि सबको इंग्लिश पढ़नी है, सबको इंजीनियर बनना है तो ही लाइफ सही होगी, तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियर बना दिया, तो उनकी आर्ट को कोई लेने वाला नहीं बचा। तो बहुत सारी कितनी सारी यहाँ पर इतनी पुरानी पुरानी आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें जैसे नक्काशी हुई, आप यदि आज करवाने जाएंगे तो कोई करने वाला आर्टिस्ट नहीं मिलता, उनके सारे बेटे उन्होंने लगाए नहीं बेटा आपको ये काम नहीं करना, आपको तो वो करना है, इंजीनियर बनिए आप। तो लाइक पहले क्या होता था, पहले देयर वाज अ सिस्टम, लेकिन कोई है तो वो लोग अपने बच्चों को उसमें प्रमोट, लाइक चार पांच बच्चे तो ठीक है, गिव देम लिबर्टी टू चूज, बट कोई एक तो सीखो इसमें से, सो दैट यू नो आगे चलेगी। ऐसे आयुर्वेदिक में क्या हुआ, नोबडी पास द नॉलेज ऑन, नॉलेज नहीं खत्म हो गया, कहाँ खत्म हो गया। तो अभी भी गिने चुने वैद्य हमारे पास है, उनके पास भी कोई सीखने के नाम पर कोई पहुंचता नहीं, बिकॉज नोबडी ट्राइज टू, और हम लोग इतने अवेयर है नहीं कि हमको इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो वी हैव मिस्ड ऑन दैट फ्रंट वेरी मच, और ये हम लोगों ने खुद ही के साथ बुरा किया और किसी के साथ नहीं किया, शॉर्ट साइटेडनेस हुई। एकदम प्रैक्टिकली लाइक एलोपैथी में देयर जस्ट यू नो आपकी नर्व सेल पे अटैक कर रहे हैं, आपको सिर दुख रहा है तो वो वाली नर्व को बोल देंगे कि भाई इसके ब्रेन तक ये सिग्नल नहीं पहुंचा तो सिर दुख रहा है, तो सिर दुखता रहेगा बट विल नॉट नो कि सिर दुख रहा है। दैट्स हाउ द मेडिकेशन इज, दैट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, दैट्स एन इल्यूजन, टेम्पररी सॉल्यूशन के भी इतना वो मतलब। आयुर्वेदिक में आपका सिर दुखना तुरंत बंद नहीं होता शायद, लेकिन वो जड़ से उखाड़ता उस बीमारी को, दैट्स द वंडर ऑफ आयुर्वेदिक, अब तो हम भूल चुके हैं।
आयुर्वेदिक कॉलेज तो है ना अभी तक?
हाँ जी, क्या
आयुर्वेद में तो डॉक्टर भी बनते हैं ना अभी?
तो वो बनते हैं, लेकिन जो साइंस थी डॉक्यूमेंटेड वो तो मतलब अब लाइक पुराने वैद्य लोग से जो इसमें एक्सपीरियंस ही क्या रहता है, मतलब आपकी नाड़ी को देखकर वो बता देंगे कि आपको क्या, आपने खाया था, आपको क्या प्रॉब्लम है।
वो डॉक्टर युग में
लोग पूछते नहीं है आपसे कि आपकी क्या बीमारी है, वो आपकी नाड़ी पकड़ते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपको ये है और आप ये करो। दैट ग्रेट द साइंसेस। अभी तो पूरा पहले एक घंटे का इंटरव्यू लेता है एलोपैथी डॉक्टर की, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर दैट ही विल टेल यू कि ये करो। दैट्स नॉट द साइंस, दैट्स जस्ट अ थ्योरी। जैसे कि हमको पता कितना बड़ा मिथ चलता है कैलोरीज के ऊपर, राइट? आपको इतनी कैलोरी लेनी चाहिए। नाउ हाउ कैन यू जनरलाइज समथिंग लाइक कैलोरीज? यार मेरी डाइट में एकदम दुबला पतला हूँ, ठीक है, बट माई डाइट इज लाइक आई कैन ईट एट चपाती, यू आर वेरी हेल्दी, योर डाइट इज लाइक टू चपाती, सो माई बर्निंग रेट इज डिफरेंट, योर्स इज डिफरेंट, एंड नाउ यू आर एक्सटेंडेडाइजिंग इतनी कैलोरीज चाहिए। सो वॉट हैपन, लाइक स्कूल्स में मेन्यू बनते हैं वो कैलोरीज के बेस पर बनते हैं, तो कुछ बच्चों का बर्निंग रेट वेरी हाई होता है, सो दे आर एक्चुअली बींग अंडर फैड, उनको कम खिलाया जा रहा है, क्योंकि हमने जनरलाइज कर दिया और हम चल रहे हैं, लोगों का बिजनेस चल रहा है, वी हैव नो थिंग, वी हैव नो टाइम टू यू नो थिंक लाइक कैलोरीज बर्न हो जाएंगे, एक ट्रेंड हो गया लाइक इसमें इतनी कैलोरीज है, सब बताने लगे, फर्क नहीं पड़ता इससे कुछ, हमारे एंसेस्टर्स ने कभी नहीं सोचे, दे वर टू हेल्दी, एंड द मोर वी आर थिंकिंग ऑन दिस द मोर टाइप ऑफ डिसीजेज आर कमिंग अप। आप रोज नई नई बीमारियों को आता देख रहे हैं, जितना हमें लग रहा है कि हम लाइफ साइंस, क्योंकि हमें जो जैसा कि बिल्कुल फार्मिंग में हुआ, फार्मिंग में क्या हुआ, हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स को इतने सारे पेस्टिसाइड्स को कर लिया, इससे हमारी ग्रोथ होगी, उसके कारण क्या हुआ, उल्टा हुआ, जो नए नए तरीके के कीड़े थे वो और पैदा होने लगे, दे आर मोर, तो अब उनको करने के लिए आपको नए पेस्टिसाइड निकालने पड़ते हैं। सिमिलरली हमने बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ नए केमिकल्स निकाले और उनके कारण अब नई बीमारियां खड़ी हो रही हैं, अब उनको सही करने के लिए नई बीमारियां, तो इट्स अ चेन नाउ। जो फार्मिंग में
कंपनीज को फिर पैसे बचते ना उन लोगों को, ये एक लो फिर उसके प्रॉब्लम हो फिर उसके दूसरी दवा दे दूसरी
ना, वही ना डॉक्टर, इट्स अ होल बिजनेस, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है, उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दे आर नॉट रॉन्ग, उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, वो रोड पे आ जाएंगे भी वो ऐसा नहीं करेंगे। बट एथिकली एंड हमारे लिए वी हैव टू बी अवेयर कि जो हमें कराया जा रहा है इज इट लाइक व्हाट वी रियली आस्क्ड फॉर, लाइक इज इट रियली, हम एक बार हम हमें आजकल सोचने को टाइम नहीं दिया जाता एक्चुअली, आपको ये कराना होगा, हम लोग नहीं सोचते और हम सीधे हाँ ठीक है डॉक्टर बोल रहे सब ठीक है कराओ। हर एक फील्ड में हो रहा है, हर एक फील्ड में
हम तो इंडिया में सिस्टम होगी ना, अब यहाँ जैसी है जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वो पेपर देते हैं उसमें पूरी हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, तो इंडिया में भी वैसे ही हो गया है ना अब तो
हर जगह यही हो रहा है। अब युगल बाबूजी कहते थे ना ईस्ट में बेस्ट घुस गया है, अब तो अपने सब कुछ आ गया है यहाँ पर, क्योंकि मेजोरिटी इज मॉब, मेजोरिटी इज पब्लिक, मेजोरिटी इज ऑलवेज स्टूपिड, ये वाला नियम है बहुत, जो मेजोरिटी का ओपिनियन हमेशा सब ग्रेडेड रहेगा, तो सब लोग एक भीड़ में भाग रहे हैं। तो अब जब यदि मेरे थोड़ा दिमाग है और मैं देख सकता हूँ कि पूरी जो भीड़ है ये ज्यादा नहीं सोच रही है एंड आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस भीड़, मैं क्यों नहीं लूंगा, आई टेक इट। यदि आई डू नॉट हैव एनी एथिकल ग्राउंड, मेरे पास कुछ एक स्पिरिचुअल मेरी पर्सनैलिटी बैकअप नहीं है, तो मैं क्यों किसी, जब लोग ठगने को तैयार, जब लोग खुद कह रहे कि आओ मुझे लूट लो तो मैं क्यों नहीं लूटूंगा।
राइट,
तो इसमें सबकी गलती है, हमारी इग्नोरेंस ही है इसमें। आजकल स्टार्टअप के नाम पर क्या चल रहा है, अननेसेसरी आपकी नीड ही तो क्रिएट कराई जा रही है, देयर नो नीड फॉर आईपैड्स, बट आईपैड्स आपके हाथ में दिए गए, वो काम कंप्यूटर में भी होता था, स्मार्टफोन में भी होता था, नो नीड फॉर सो मेनी थिंग्स एंड वी वर गिवन दोस थिंग्स, राइट। लाइक सिंपल से लाइक
बीपी सारा बिजनेस है और लोग इतने फंस जाते हैं, लाइक यू नो अभी तो क्या है कि वांट 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 ये इलेक्ट्रॉनिक सारी सेलफोन में भी, तो सेलफोन भी तो कितना एक एक मिनट, मुझे तो ऐसा लगता है कितनी आकुलता लोगों को होती है, एक एक मिनट फोन पर देखते, एक एक मिनट फोन में देखते, एक एक मिनट फोन पे देखते,
वो हमारी दुनिया हमारी पूरी जिंदगी नरक बनाती है सेलफोन में बहुत ज्यादा बड़ा वाला नरक बिकॉज क्योंकि पहले जैसे कि हम कहीं जाते थे हम ठीक है पहले नहीं था सेलफोन तो कनेक्टिविटी कम थी, बट सी जैसे कि मैं यदि अपने घर से बाहर पढ़ने जाता लाइक से आई केम टू यूएस फॉर स्टडीज एंड देयर इज नो सेलफोन, मैं क्या करता, मैं लेटर लिखता, कभी भी लिखता तो लेटर लिखता या टेलीग्राम भेजता, बट इवन इन दैट इतनी आकुलता नहीं होती थी मम्मी पापा लोग को, उनको पता था ठीक है आ रहा होगा तो आ रहा होगा। अब मैं घर से ऑफिस जाता हूँ इस बीच चार बार मम्मी का फोन आ जाता है बेटा पहुंचे नहीं पहुंचे क्या हुआ। सो नाउ इसने हमारी मतलब पहले बच्चा दूसरे देश में रह आता था और उसकी कोई चिंता नहीं होती थी, पर अभी बिकॉज यू हैव दिस फैसिलिटी तो आपने अपनी चिंताओं को अपनी आकुलता को बढ़ाया है। अब कोई फोन नहीं उठाए मतलब पहले महीनों बात नहीं होती थी तो चलता था, अब हमने एक फोन नहीं उठाया तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है, अरे फोन करके रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, हम इतने अनईजी हो गए किसी ने फोन कट कर दिया गलती से, हमारा ईगो कहाँ शेटर होता है मैं नहीं पता, कोई हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, वी आर लाइक जस्ट यू नो क्या कर रहे हैं, हम इतने अनईजी हो चुके हैं। स्टडी इसमें इसलिए चल रही है कि सोशल मीडिया हैज मेड अस सेल्फ सेंट्रिक, हमें मेरी मेरी फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया, मेरे कमेंट पर कितनों का कितना रिस्पॉन्स है, मतलब नाउ इट्स अ सेल्फ ऑब्सेशन दैट इज ऑन द राइज, लाइक मैं सेलफोन भी लेता हूँ या मैं कुछ ईयरफोन में छोटी सी चीज भी लेता हूँ, इट इज आई एम टेकिंग बिकॉज आई लुक कूल, मेरा कुछ अच्छा होगा, आई एम द ट्रेंडी, आई एम नॉट ऑफ बीट, मैं बिजनेस और सॉरी फैशन से बाहर नहीं, एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड ऑन दैट वन टैग ओनली, स्मार्ट यूज स्मार्टफोन, सो लाइक दैट्स अ ट्रेजेडी, आपको स्मार्ट बनने के लिए दिमाग नहीं अब सेलफोन दिखाना पड़ रहा है। सो
I am one of those, मेरे पास अभी अब तक सेलफोन नहीं है।
Great, आप लाइक वो रेयर स्पीशीज है, वो से लाइक एक रेयर एग्जांपल है।
मैं सबको देखती हूँ वैसा, बस मैं के जाओ तो एक एक मिनट क्या है, आई कैन नॉट हैव पीपल कॉलिंग मी ऑल द टाइम. मुझे
बट यू आर सेइंग बट आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग. ओके यू ट्राई सेल फोन फॉर वन मंथ, यू विल बी जस्ट लाइक अस. आप बिल्कुल जल जाओगे. So don't like it. If you have been, you know, like saved by this till now, please do not take this risk. Like do not even experiment. आप please मत करिएगा. It's like कीमत जी की भाषा में बोले तो उन्होंने सीधा सीधा शब्द दिया है, माया हर तरफ छाई हुई है और जब मैं इसको दूर से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसमें घुसूंगा और मैं बच के निकल जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा. लेकिन माया की माया ही ये है कि वो अपने पास बुलाती फिर हमको सब भुला देती है.
That's true.
मतलब हम सबको लगता है कि हमने स्वाध्याय किया हुआ है, हम तो नहीं फंसेंगे इसमें. लेकिन सी हमारा सारा धर्म अचानक से स्वाध्याय भवनों से उठ के अब फेसबुक और व्हाट्सएप पे आ चुका है. सडनली सारी तत्व चर्चा हमको फेसबुक व्हाट्सएप पे ही करनी होती है. क्यों हुआ अचानक से?
व्हाट्सएप में भेज देंगे, व्हाट्सएप में भेज देंगे.
व्हाट्सएप में सबको चलेगा तो सबको आत्मा की बात अब व्हाट्सएप और फेसबुक पे चाहिए.
मैं भी व्हाट्सएप में मिल एक दर्शन उसमें हो जाएगा फ्यूचर में.
ये क्योंकि माया का ऐसे ही खेल है. छलावा दे रहे हैं जब तक सेटिस्फेक्शन है वो कि चलो हमको एक गिल्ट हो रही थी कि मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ फेसबुक चला रहा हूँ. सो लाइक जस्ट टू ओवरकम दैट गिल्ट मैंने एक धर्म का और सेंटेंस छोड़ दिया. ठीक है चलो एक दिन पर इतने सारे मैसेजेस हैं साथ में एक आत्मा का और भेज देते हैं. हो गया. सो दिस इज लाइक ऑलरेडी वी आर टू मच इंटू इट. पानी मतलब ये बहुत बड़ा हमारे साथ. हम लोग अपने आप को मतलब इवन इफ वी आर यू नो सपोर्टिंग इट यदि इसका जैसे कि मोना में हम लोग कर रहे हैं. वी आर यूजिंग इंटरनेट इन एक्सलेंट वे. बट इसमें हमने ग्रंथ को नहीं छोड़ा है, हमने इसमें इंटरेक्शन को नहीं छोड़ा है. आजकल द डायलॉग हैज स्टॉप्ड. मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन से बात कर रहा हूँ आज. मैं अपनी फेसबुक वॉल से बात कर रहा हूँ आज. वहां इंटरेक्शन खत्म हो गया है. तो मैं भी आपको मैसेज भेजता हूँ आत्मा का भी. मैं इसलिए नहीं भेजता हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात है. मैं आपको इसलिए भेजता हूँ क्योंकि यार ये वाली बात मुझे पता पड़ी, मैं सबसे पहले आपको भेजता हूँ. तो देख यू नो कि यार ये सही मैसेज इसने भेजा हुआ है. तो मैसेज के कंटेंट से मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे लेना है इस बात से कि आप मुझे कितना पसंद करते हो, मैंने इतना सही मैसेज भेजा है. ये हम अल्टीमेट हम एक ट्रैप में खुद ही फंसते जा रहे हैं. हमारा धर्म का मोटिव चला गया है. तो आज हम आत्मा के ऊपर कविताएं बना के शायद आपको भेज देंगे, लेकिन उस कविता से आत्मा का कुछ लेना देना नहीं. ये है कि कितने लोगों को मेरी कविता बना के पसंद आती है. पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो मैं अपनी डायरी में लिख के शांत बैठ जाता था, खुद ही पढ़ लेता था. दैट वॉज फॉर मी. बट अब मैं एक बार लिखूंगा बहुत अच्छे से एंड देन आई विल सेंड इट टू यू. उसमें होंगे आत्मा के गुणगान और बोलेंगे कि आत्मा को कोई विशेषण नहीं लगते, आत्मा कोई उपमा नहीं लगती, आत्मा को इन सबसे निराला है. एंड उससे हम रिटर्न में क्या चाह रहे हैं कि यार मेरी दो चार लोग तो बोले कि अच्छी लिखी भाई, वेरी गुड, वेरी डन, कितना अच्छा लिखते हो. सो एवरीथिंग इज नाउ सेल्फ सेंटर्ड. सब हमको ये टेक्नोलॉजी इतना भी लेके आ रही है कि पूरा हमें बॉडी बेस्ड बना रही है. हमारी हर एक चीज नाउ इज बीइंग रेफर्ड फ्रॉम समथिंग एल्स. हमारा इंट्रोडक्शन हमारे कपड़ों पे होने लगा है. हमारा इंट्रोडक्शन द काइंड ऑफ म्यूजिक वी लिसन टू, द काइंड ऑफ चैनल्स वी वॉच टू, द काइंड ऑफ न्यूज़पेपर वी रीड टू, द काइंड ऑफ सेल फोन वी हैव. हम टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, हम कहाँ पर घूमने जाते हैं, ये हमारे आजकल परिचय पड़ गए हैं. जो मूलभूत हम जो वस्तु थे आत्मा, जिसका ज्ञान दर्शन काम था, जिसके वैराग्य समता निर्वेद संवेद ये संस्कार थे, इन संस्कारों को तिलांजलि दे दी गई. अब इनसे कोई लेना देना नहीं, इनसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं होता. इनसे होता है तो ऐसा होता है कि यार वो तो बहुत सीधे हैं, उनसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो. तो नाउ दिस इज लाइक दिस इज द सामने हमको अपेरेंट है. हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल जिसको हम एडवांसमेंट मान रहे हैं उसके कारण कोलैप्स हम कितने हो रहे हैं मेंटली इमोशनली. डिप्रेशन इज एट हाई टाइम ऑल टाइम.
क्योंकि डिप्रेशन क्यों नहीं होएगा अनुभव जी, क्योंकि अभी वैसे पर्सनली एक दूसरे से चर्चा वार्ता करना वो तो के शेयर करना कि वो तो अभी चला गया है सब। वैसे मैंने तो सुना है कि लोग साथ में बैठते तो सब अपने अपने सेल फोन पर बैठे हैं, तो
ये हो रहा है।
हाँ नहीं, सब फ्रेंड से मैं सुनती हूँ क्योंकि हमारे हम तो दोनों हैं, हम रखते नहीं है घर में ये सेल फोन वगैरह।
बहुत बुरा है ये, मतलब इंटरेक्शन लाइक आई सेड इंटरेक्शन बंद हो गया है। तो पहले क्या होता था, हमारे जो दोस्त होते थे हम उनसे अपनी बात शेयर कर लेते थे। अब क्या हो गया है, क्योंकि हमारा सारा कंपटीशन हमारे दोस्तों से है, तो मुझे ये शर्म आने लगी अपने दोस्तों को बताने के लिए कि मैं परेशान हूँ। मैं उसको सिर्फ ये बताता हूँ कि यार मेरा यहाँ प्लेसमेंट हो गया। मैं उसको सिर्फ ये बताऊंगा कि यार मैं यहाँ जे लेके आया, डिड यू सी माई कार, डिड यू सी माई हाउस, एक बार देख तूने मेरी फोटोज देखी, मैं इस बार हिमालयाज होके आया। सो नाउ इवन टू अवर फ्रेंड्स वी हैव लाइक स्टॉप यू नो शोइंग अवर जो हमारी कमियां थी, हम उनको डराने दिखाने से डरने लगे। जब हम किसी को नहीं दिखाएंगे तो वो अंदर तो रहेंगी ना हमारे, दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विल कम, दैट फियर विल कम, दैट व्हाट विल हैपन व्हेन एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, सो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली इज कमिंग इन, इट्स सेटलिंग इन। स्टडी, रिसेंट स्टडी इन इंडिया में एवरी आउट ऑफ 10 6 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, दैट्स अ रियल स्टैटिस्टिक। डिप्रेशन रेट हैज रैपिडली इंक्रीज्ड। कलेक्टिव क्राइम है जो हमारी पूरी सोसाइटी एज अ सोसाइटी क्या डूइंग। बच्चों को हमने इतना प्रेशर दे दिया है उनका चाइल्डहुड किया, राइट बड़ों को इतनी दौड़ लगी, उन लोग के कुछ निर्णय है नहीं, उनकी कुछ फाउंडेशन है नहीं, उनको आपने बताया है नहीं कि कुछ एक तहजीब होता है, लहजा होता है, हमको मतलब एवरीबडी जस्ट आफ्टर मनी एंड सक्सेस, सबको ऊपर चढ़ना है, कैसे चढ़ना है नो बडी हैज टोल्ड देम, तो किसी को गिरा के चढ़ना है तो वो तैयार है गिरा के,
तो वही सीख लेते हैं सोसाइटी में से,
तो बस अब
आगे बढ़ना।
अंधाधुन दौड़ चल रही है सबका एक दूसरे से कॉम्पिटिशन। एक कहानी आती है पंचतंत्र में, वो एक खरगोश बैठा था पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक से धम्म आवाज आई, वो ध्यान अचानक से उठा एंड उसने ऊपर देखा, उसको अच्छी तेज आवाज, उसको लगा आसमान गिर रहा है, तो वो भागने लगा तो दूसरा वहां से कोई दूसरा उसको जानवर मिला, उसने क्यों भाग रहे हो भाई, तो भाई आसमान गिर रहा है, तो भागने लगा। तीसरे चार पांच लोग मिले, सबने बोला क्यों भाग रहे हो, आसमान गिर रहा है, तो एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग। आस्क क्वेश्चन कि भाई आसमान गिर भी सकता है कि नहीं गिर सकता है, किससे पॉसिबल है। शेर को फंसा चाहे सबको, शेर ने भागते हुए देखा, शेर सो रहा था, सब उससे पूछा क्या हुआ भाई, बोला आसमान गिर रहा है भागो, शेर बनाया आसमान गिर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। उसको बोला भाई किसने बोला आसमान, जो पहले वाले जानवर इसने बताया, इसने बताया, उसने बोला इसने बताया। आखिर में सब पहुंचे खरगोश के पास, खरगोश ने बोला कुछ नहीं मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहां मुझे बहुत ही आवाज आई आसमान गिर रहा है, सब गए वहां पर देखा तो एक बहुत बड़ा नारियल पड़ा हुआ था, धम्म से जैसे नारियल गिरा उसको लगा आसमान गिरता है। तो nobody of us is willing to stop, take a pause and question, do I require this? क्या ये सही में जरूरी है? उनने बोला है कि हाँ तुमको करियर में आगे बढ़ना है, is it really required to live a successful peaceful life? यदि require है तो फिर जब ये टेक्नोलॉजी 50 साल पहले नहीं, 50 क्या 20 साल पहले नहीं थी, मोबाइल तो 6 साल पहले नहीं थे, जब ये 6 साल पहले नहीं थी, 8 साल पहले नहीं थी, तब लोगों की जिंदगी में सक्सेस के क्या मायने होते थे? मिलेनियम्स निकल गए, इतने बड़े बड़े राजा इतने इतने संपन्न राज्यों को करके चले गए। मैं अपने पुराणों की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा वो जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, राइट अकबर, सो ऑल दीस किंग्स वर, इनके इनके जमाने में इतने बड़े बड़े सेठ हुए। आप सेठों के भी आप बारे में पढ़ेंगे, हम जैन सेठ जो हुए, हीराचंद जी मुंबई के इतने बड़े सेठ हैं, अजमेर के सोनी जी इतने बड़े सेठ हुए, लोगों की लाइफ में कैसे फिर मतलब इनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी ना, ये तो नहीं भागे ना। बेसिक हम सामने देखते हैं कि कोई बंद सब लाइक दो लोग सेम शॉप पर बैठने पर इतनी ज्यादा चलती है कि कम चलती है, एवरीथिंग इज सेम, वाइट सो हैपन, बट दे आर नॉट टेकिंग द पॉज टू डिसाइड कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमको मतलब बहुत मतलब आज के में तो वो श्रीमद राजन जी का तो बहुत सही लगता है, क्या ये जहाँ सब माया, ये सब मोहिनी है, मोहिनी मोहिनी को पहले मतलब बहुत दूर से उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत बड़े शेर है और हम इससे निकल जाएंगे, हमारा नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वही उसकी चाल है। आपको बुलाई इसलिए रही कि आप एक बार ऐसे कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं मैंने तो बहुत सीखा है जैन धर्म, मैं नहीं निकलूंगा, लेकिन आप बड़े बड़े हमारे अच्छे लोग कैसे फंस गए हैं। कोई वैसे किसी को लाइक सिर्फ अब मंदिर बनाने में ही शौक हो गया है, किसी को सिर्फ लाइक यू नो हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया हर चीज को। तो वी टॉक अबाउट आत्मा बहुत प्राइड से, लेकिन आप जब मेरी लाइफ को देखोगे तो उसमें आत्मा का एक शब्द नहीं मिलेगा। तो हम वचनों में बहुत कुछ सीख गए, जीवन में हम कुछ उतार नहीं पा रहे हैं। फिर ये आश्रमों की चर्चा है, आश्रम में चार प्रकार के हमने देखे, पहले आश्रम का इनविटेशन,
हम कितने बार एडमिटेशन देते आश्रमों को, ये
तो
कितना रुकते थे।
तो मिनिमम एक समय में कम से कम जो कर्मों का आना होता है संसारी चीज के, दैट इज अभव्यों के अनंत गुणे, अभव्यों की जो संख्या है उसके अनंत टाइम्स कम से कम कर्म आपके साथ प्रति समय बनते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्म जो हमारे साथ बनते हैं वो सिद्धों की संख्या के अनंत से भाग। सो सी मिनिमम नंबर ऑफ कर्म दैट हैपेंस लाइक दैट गेट्स बॉन्डेड विद अस एवरी समय, मिनिमम इज अभव्यों की जितनी संख्या है आप उसको मल्टीप्लाई करो अनंत से, ठीक है। अधिक से अधिक कर्म यदि हमको बने अनंत,
एक मिनट,
आपने फिर से बोलिए प्लीज।
मैं वापस बोलता हूँ, कर्मों की हमारे पास, हम पहले समझे कि हम लोग कितने ज्यादा धोखे में जी रहे हैं। तो थोड़ा सा विषय करना नियुक्त का जो मैं भी आपको थोड़ी देर बताऊंगा, और क्योंकि हमारी आज लास्ट क्लास है, थोड़ा मैं 5 मिनट इसमें थोड़ा ऊपर जस्ट इलेबोरेट करने के लिए आपको बताता हूँ क्या किया जाएगा। सबसे कम कर्म किसी भी जीव के, जो सबसे अच्छा जीव है लाइक सर्वासिद्धि का देव या फिर 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत भगवान, कम से कम उनके भी कर्म आ रहे हैं। तो कम से कम कितने आ रहे हैं उनके प्रति समय कर्म, अभव्यों की संख्या से अनंत गुण, दैट्स द मिनिमम नंबर, ठीक है। अधिक से अधिक कर्म जो आएंगे आपके पास एक समय में वो आएंगे सिद्धों की संख्या जितनी है उसके अनंतवे भाग, उसको डिवाइड करना है अनंत से, राइट। मिनिमम कितनी है अभव्यों की संख्या, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी है सिद्धों की संख्या डिवाइडेड बाय अनंत,
सिद्धों की संख्या डिवाइडेड बाय, अच्छा ये वो अभव्य अभव्य के डिवाइडेड बाय के अभव्य टाइम्स अनंत,
अभव्य इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अनंत, छोटी सी डेटा हमको क्या बताती है, अभव्य ज्यादा है कि सिद्ध ज्यादा है, सिद्ध ज्यादा है, कैसे, क्योंकि हम सिद्धों पे से डिवाइड कर रहे हैं फिर भी सिद्ध मैक्सिमम है और अभव्यों पे हमने मल्टीप्लाई किया है तब भी अभव्यों की संख्या कितनी होगी मिनिमम,
मिनिमम।
तो जब मैं आपको एक छोटा सा पीस ऑफ डेटा बताता हूँ, कई बार डाउट होता है ना कि यार हम अभव्य तो नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभव्य होना कितना टफ है, अभव्य होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, ठीक है। हम लोग जब बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं उनसे बोलते हैं बेटा आलू मत खाया करो, ठीक है, हमको रूट वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, क्यों नहीं खाने चाहिए, तो उसके लिए ज्ञानेंद्र राय जी का श्लोक आता है, छंद आता है, एक निबोध शरीर में एक जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। एक हम मार्केट से आलू लेके आए, आलू में हमने एक छोटी सी पिन लगाई, पिन एकदम नुकीली पिन, और पिन में जितना आलू आया, आलू नहीं आएगा उसमें आलू का पानी आएगा, राइट, उसमें कितने असंख्य निबोध शरीर पाए जाते हैं, उतने से पार्ट ऑफ आलू में इतने शरीर है, असंख्य अनकाउंटेबल निगोज शरीर है, ठीक है। उन अनकाउंटेबल निगो शरीर में से हमको एक शरीर उठाना है, कितने उठाना है, एक शरीर। पूरे आलू में हमने पिन लगाई, पिन में जितना आलू आया उसमें असंख्य शरीर, असंख्य में से हमको कितने लगाने हैं, कितने लेने, एक शरीर। एक वो निगो जो शरीर है, अब बाकी सबको अलग कर दो, आलू को अलग कर दो, पिन को अलग कर दो, जस्ट एक शरीर को पकड़ो। उस निगो शरीर में इतने निगोदिया जीव है जितने तीन काल के सिद्ध नहीं है, मतलब उस निगोदिया शरीर में जितने जीव है उसकी अनंतवे भाग सिद्ध भगवान की राशि है। कितने सिद्ध भगवान की, तीन काल के सिद्ध भगवान की, मतलब उसमें हम और आप शामिल है। छह महीने आठ समय में 608 जीव बनते हैं, उसमें से हमारा भी नंबर है, बहुत जल्दी होगा, राइट होगा। तो तीन काल के सिद्ध उस एक शरीर जो इतना सा शरीर है उसके जीवों के अनंत विभाग है। मतलब आप क्या करो, आप दो तरीके से तराजू रखो, ठीक है, हम दो तराजू के चेहरे रखेंगे, हाँ वेट, ठीक है, एक बेट पर हम सिद्ध रखेंगे और एक बेट पर हम निगोद शरीर का जीरो को रखेंगे। हम क्या करेंगे, जब सिद्ध वाले बेट है ना उसमें से हम माइनस वन करेंगे, एक सिद्ध को अलग किया हमने, ठीक है, और यहाँ पर से हमने जो निगोदियों की जल शरीर जितनी निगोदिया चीज है यहाँ पर से हमने माइनस किया अनंत, ठीक है, यहाँ कितना माइनस किया हमने, एक, इसे सिद्धों में से हम कर रहे हैं माइनस वन फॉर एवरी वन सिद्ध, या डिडक्टिंग अनंत जीव फ्रॉम निगोद शरीर से। आप यहाँ से एक घटाते हो तो यहाँ से कितने घटाओगे, अनंत, ठीक है, यहाँ से वापस एक घटा, यहाँ से कितने घटाओगे, अनंत। ऐसे आप घटाते जाओ, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, सिद्धों की संख्या तो खत्म हो जाएगी, सिद्धों वाला वेट विल बी एम्प्टी और यहाँ पर निगो शरीर वैसे की वैसे अनंत के अनंत बने रहेंगे, उतने जीव है उसका एक निगो शरीर। बात आई समझ में आपको, इसलिए जीवों की संख्या को बोलते हैं अक्षय अनंत। इसलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर इनवैलिड हो जाता है कि हर छह महीने आश्रम में 608 जीव जाएंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा खाली, अनंत काल बाद भी एक निगो शरीर के जीव भी सिद्ध दशा तो क्या पाएंगे, वो लोग संसार राशि में भी नहीं आ पाएंगे, निगो से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक शरीर के लिए ऐसे अनंतानंत शरीर है। बात समझ में,
हाँ
हेलो। अब आप देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स लगाइए, ठीक है, अभव्यों के अनंत गुणे सिद्ध, क्योंकि अभव्यों को जब अनंत से गुणा कर रहे थे तब भी वो सिद्धों के अनंत विभाग से बहुत छोटा था, करेक्ट, तो अभव्यों को आप अनंत से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो सिद्धों की टोटल पॉपुलेशन से बहुत कम है, और सिद्धों से अनंत गुना एक निगोद में शरीर, तो एक शरीर में जीव, एक निगोद शरीर में जीव, मतलब एक जो शरीर है उस शरीर में 99.99% जीव भव्य है, एक दो जीव होंगे अभव्य। समझ में आपको, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। इसके लिए आचार्य पद्मनंदी ने, आचार्य कार्तिकेय, सॉरी पद्मनंदी ने, आचार्य पद्मनंदी ने ये लिखने में बिल्कुल भी वो नहीं किया, उन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी, उन्होंने बोला ये स्मृति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पी ही श्रुता, जिसने भी इस बात को एक बार प्रीति से सुनिए, प्रसन्न होकर सुनिए आत्मा की बात, वो निश्चित भव्य है। अरे वो भव्य हो गए यार, भव्य इतने सारे लोग हैं, बट द क्वेश्चन इज डिफरेंस क्या है, आप दूरांतर भव्य हो कि आप निकट भव्य हो, आप यदि प्रसन्न होते तो आप निकट भव्य बनोगे, क्योंकि दूरांतर भव्य आर इक्विवेलेंट टू अभव्य, भव्य होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन आपके तत्व की बात सुनकर प्रमोद होता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरी बात है कि मैंने पहले क्यों नहीं सुनी, ऐसी खुशी आपको होती है, तो फिर हम वी आर द लकी चंक, हम लोग बहुत लकी हैं, फिर हमारी भवितव्यता, लकी यानी के नॉट पुण्योदय वाले लकी, हम भवितव्यता से लकी हैं, हमारी होनहार भली है,
हम सचमुच जल्दी शुद्ध दिशा को पाएंगे, हमारे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, यह बात समझ में राइट। तो भव्य है कि अभव्य वाला क्वेश्चन तो खड़े ही नहीं होता हमारे सामने, क्योंकि अभव्य होना खुद ही में एक उपलब्धि है राइट। इट्स सो रेयर, दे आर लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। तो अभव्य वाला तो कभी डाउट हमें होने ही नहीं चाहिए राइट। बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो अभव्य है ना वो भी अनंत है, वो भी अनंत है, बहुत सारे अनंत है। तो जो हमें प्रति समय कर्म आ रहे हैं ना, अनंत आ रहे हैं प्रति समय। अब एक समय कितना होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एक मिनट 60 सेकंड का होता है और 60 सेकंड पर 72 स्वच्छ श्वास होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में 3/4 ऑफ अ सेकंड इज 1 स्वच्छ श्वास। एक स्वच्छ श्वास में संख्यात आवलियां होती है, लेट्स से 2000 आवली होती है, ठीक है। एक स्वच्छ श्वास में संख्यात आवलियां होती है, लेट्स से नंबर 2000 काउंटेबल आवलियां होती है, 2000 लेट्स से एक स्वच्छ श्वास में 2000 आवली समझने के लिए ले रहे हैं।
परंतु वैसे संख्यात आवली बोली
ना, संख्यात आगम में उसका संख्यात आता है, 2000 हम मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से 2000 एक आवली में जघन्य युक्ता संख्या समय होते हैं, कितने समय होते हैं जघन्य युक्त असंख्यात। असंख्यात के असंख्यात प्रकार है, उनका डिवीजन 9 प्रकार से होता है।
अनुभव
बोला एक आवली में जघन्य,
एक आवली में जघन्य
असंख्यात,
मैं बताता हूँ धीरे धीरे बोलता हूँ। जघन्य युक्त असंख्यात
युक्त
युक्त जघन्य
युक्त असंख्यात क्या क्या
समय
युक्त असंख्यात
उसका नहीं, असंख्यात जैसे होते हैं ना अपना लाख सैकड़ा करोड़ 100 मिलियन ट्रिलियन राइट, ऐसी संख्या को संख्यात एक यूनिट है, ठीक है। तो असंख्यात के 9 प्रकार होते हैं।
अच्छा,
जघन्य परीत असंख्यात, मध्यम परीत असंख्यात, उत्कृष्ट परीत असंख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्यात संख्यात, मध्यम असंख्यात संख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात, फिर अनंत स्टार्ट होगा, जघन्य परीत अनंत, मध्यम परीत अनंत, युक्त परीत अनंत, ओके। ऐसे अनंत के चलेंगे फिर, जघन्य युक्त अनंत, ये बड़े बड़े बढ़ते जाते हैं एक्सटेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इधर तक आप लोगों ने लिखा, हम ये समझना चाहेंगे हैं
कावली का जघन्य युक्त का संख्या था,
हाँ। और जघन्य युक्त का संख्या होता कितना बड़ा है, ये ओनली हमको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पर, इंटेंशन हमारा कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि एक समय में कम से कम अभव्यों के अनंत गुने और अधिक से अधिक सिद्धों के अनंत विभाग कर्म हमारे पास आते हैं, करेक्ट, ठीक है। और एक पौन सेकंड 3/4 सेकंड में एक स्वच्छ श्वास होता है, एक स्वच्छ श्वास में 2000 आवलियां होती हैं कहने के लिए, और एक आवली में जघन्य युक्त असंख्यात समय, मतलब आप एक सेकंड में कितने कर्मों का बंध करते हो, इमेजिन दैट। अब मैं आपको बताता हूँ जघन्य युक्त असंख्यात कितनी बड़ी चीज है, किया हम बस 5 मिनट लूंगे, बहुत बड़ा है, थोड़ा टफ भी है, नहीं भी आएगा समझ में तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। बट जस्ट लिसनिंग टू इट, एटलीस्ट जस्ट समझ, सुनने तो आए कि ऐसा कुछ होता है, जैनिज्म की मैथमेटिक्स ये है, ओके। तो क्या होता है, हम 4 गड्ढे बनाएंगे, कितने बड़े बड़े, जम्बूद्वीप के बराबर, जम्बूद्वीप कितना है 1 लाख योजन, एक लाख योजन चौड़े मतलब उसका पूरा सर्कल और गहराई में 2000 योजन। एक लाख योजन गहरे और 2000 योजन दूसरे में 2000 सर्कल खोलिए।
आपके पास लिखा हुआ है क्या कि बुक में से पढ़ रहे
हैं? सब कुछ दिया हुआ है ग्रंथों में। एक लाख योजन जम्बू जी बराबर और 1000 योजन उसका गहरा, ऐसे में 4 कुंड बना गए। पहले कुंड का नाम है अनवस्था कुंड। अब आप लोग बस सुनिएगा, तो लिखेगा ये बहुत टफ हो जाएगा। फर्स्ट इज अनवस्था कुंड, सेकेंड इज शलाका कुंड, थर्ड इज प्रतिशलाका कुंड एंड फोर्थ इज महाशलाका कुंड। चारों सेम गड्ढे हैं, सेम गड्ढे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अनवस्था कुंड मतलब जो चेंज होता रहेगा, इसका नाम ही अनवस्थित है, इसकी अवस्था एक सी नहीं रहती है, बदलेगा, इसका शेप बदलेगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम राई के दाने लेके आएंगे, सरसों के दाने, सरसों होती है छोटी छोटी सरसों,
हाँ।
और हम सरसों को इस पूरे पहले अनवस्था कुंड में भर देंगे, ठीक है। कितना बड़ा अनवस्था कुंड है, 1 लाख योजन का, इसमें हम पूरी सरसों भर देंगे, पूरे अनवस्था कुंड को इससे भरेंगे, सरसों से भरेंगे, ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन, अभी आप जितना वर्ल्ड जानते हो वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का एक छोटा सा पार्ट है। अभी हमने हरि, विदेह, रम्या, खैरण्यवत, एरावत, ये वाले क्षेत्रों के तो हमें कुछ पता भी नहीं है। तो 1 लाख योजन कितना बड़ा होता है, जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है। उसमें आपको पूरे में क्या भरनी है, सरसों भरनी है। कितनी सरसों आएगी, अनंत आ जाएगी कि कितनी आएगी, काउंटेबल आएगी, अनकाउंटेबल आएगी?
अनकाउंटेबल।
कितने सरसों के दाने आएंगे?
अनकाउंटेबल।
अनकाउंटेबल
कितना लाख योजन जो है, तो उसमें सर के तो कैसे काउंट करे?
और उसको सिर्फ ऐसा नहीं भरना है कि आपने गड्ढे को भर दिया, आपको गड्ढे को ऊपर तक डालना है, मतलब उसका एक पाइल बन जाए। आप तब तक डालते रहो जब तक वो गड्ढे को बाहर नहीं, तो पहाड़ जैसा बनाना है अपन को। तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है कि उसमें कितनी सरसों आएगी। तो पता है तो कितनी सरसों के दाने आएंगे इतने बड़े गड्ढे में? देट वुड बी जस्ट अ 46 डिजिट नंबर, 46 अंक क्रमांक।
कितने?
46 डिजिट सरसों, दैट्स इट। चालीस अंक प्रमाण उसमें सरसों आएगी, क्योंकि केवल ज्ञान का चमत्कार है कि उन्होंने गिनती बता दिया कितनी आएगी, राइट। बट क्या बोलना चाहिए मुझे, हम इसको बहुत ज्यादा अंडरग्रेड करते हैं काउंटेबल को, संख्या, हम असंख्यात अनंत की इतनी बात करते हैं कि हमको लगता है संख्यात बहुत छोटा है, बट संख्यात इज सो बिग, इट्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, राइट। मैं बताता हूँ संख्यात कितना बड़ा होता है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना आपका पूरा भर गया ऊपर तक, जितने सरसों के दाने आए आप सबको उठाइए, अपनी जेब में भरिए, जेब में भर के अब हमको चलना है मध्यलोक की यात्रा में, ठीक है। मध्यलोक की यात्रा को करने के लिए हम निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जम्बू द्वीप पर हम सबसे पहले खड़े हैं, तो अपनी जेब में से एक सरसों का दाना निकालेंगे और जम्बू द्वीप में डाल देंगे, ठीक है। ये 4 गड्ढे तो अलग कहीं बनाए हमने अलग, अब हम मध्यलोक की यात्रा में निकले हैं, सारे सरसों के दाने जितने हमारे पहले अनवस्था कुंड में आए थे हमने उनको जेब में भरा, वो 46 डिजिट नंबर था, हमने उसको जेब में भरा और हम एक के बाद एक जम्मू द्वीप की यात्रा करने, सॉरी मध्यलोक की यात्रा करने निकले हैं। तो हमें सबसे पहले जम्मू द्वीप पड़ा, हमने वहां पर एक सरसों का दाना डाला, हमारी जेब थोड़ी हल्की हो गई। हम लवण समुद्र में आए, हमने एक और दाना डाला। हम धातीखंड द्वीप में आए, एक और दाना डाला। पालोदी समुद्र में आए, एक और दाना डाला। पुष्करवट द्वीप में आए, एक और वट डाला। पुष्करवट समुद्र, ऐसे करते 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 एक द्वीप एक समुद्र में आपको एक एक दाने डालते जाने हैं। ऐसे आपको तब तक चलना है जब तक आपके दाने खत्म नहीं हो जाए। वो कब होंगे, जब आप 46 डिजिट नंबर पर जो द्वीप या समुद्र आता है वहां पर पहुंचोगे, करेक्ट।
हेलो, अच्छा तो वो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, तो वो उसका अंक भी 46 है, वो फाइनल।
तो अभी अपन आखिरी द्वीप पे थोड़ी पहुंचे हैं अभी हम, अभी तो हम रास्ते में, तो 46 डिजिट अंक पर जो द्वीप आएगा हम उस द्वीप पर, जैसे आठवा द्वीप नंदीश्वर द्वीप है राइट, तो 46 डिजिट नंबर पर जो द्वीप आएगा हम उस द्वीप पे पहुंचेंगे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, जम्बू द्वीप से दुगना लवण समुद्र, उससे दुगना धाती खंड द्वीप, तो ऑब्वियसली इट्स बीन डबल 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 डबल। आप लोग इसको कंप्यूटर में करके देखिएगा, 2 को आप 2 से कब तक मल्टीप्लाई कर सकते हो, जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर। हमारे कंप्यूटर्स नहीं जानते आप 100 के बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर पाओगे, इतना बड़ा नंबर आ जाता है, फिर बड़े कंप्यूटर्स की मेमोरीज बढ़ानी पड़ती है हमको। ये तो कितना डबल होते जाना है, 46 डिजिट टाइम्स 2 को, मतलब लाख योजन को उससे डबल होते जाना है, कितना बड़ा एरिया होगा वो, चलिए इमेजिन उसका उसका एरिया कितना बड़ा होगा जिस जिस द्वीप में हम आखिरी हमारी जेब खाली होगी। ठीक है, तो जहां पर जेब खाली हुई हमारी, हमने वहां पर जितना उसका एरिया है उस द्वीप या समुद्र का, हम अब नया वहां पर उतना बड़ा अन्वस्था होल्ड बनाएंगे, और हम प्यार एक दाना लेके शलाका वाला जो हमने गड्ढा बनाया था, हमने 4 गड्ढे बनाए थे स्टार्टिंग में, तो हमारा अन्वस्था तो चेंज हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, लेकिन जो शलाका तो बिल्कुल वैसे ही पड़ा है जम्बू द्वीप जितना, उसमें हम एक सरसों का दाना डालेंगे। ठीक है, एक बार जेब जब खाली होती है तो दो काम होते हैं, हम अगले गड्ढे में एक दाना डालते हैं, और जिस गड्ढे पर जिस द्वीप पर हमारी जेब खाली होती है हम अन्वस्था कुंड उतना बड़ा बना लेते हैं। उतना बड़ा बनाया हमने अन्वस्था कुंड,
कितना बड़ा, वो
आखिरी तक द्वीप आएगा, 46 डिजिट नंबर का जो द्वीप है वो है। ठीक है, उसमें हमें वापिस सरसों भरनी है, वापिस उस सरसों को उठाना है, जेब में भरना है, और अब उस द्वीप के आगे से अपनी यात्रा शुरू करनी है। वापिस आओ अपने जेब से, कि गिराते जाओ गिराते जाओ गिराते जाओ। अभी देखिएगा, पहला द्वीप में 46 डिजिट नंबर आया था, ये वाली द्वीप में कितना आएगा, वी हैव नो क्लू, बट दैट नंबर इज स्टिल काउंटेबल, अभी अनकाउंटेबल स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको पता है जब नंदीश्वर द्वीप का कितना एरिया है, अपना जम्बू द्वीप पे 100,000 योजन, नंदीश्वर द्वीप कितना हो जाता है पता है आपको, 8वें द्वीप में पहुंचने पर हम कितने बढ़ जाते हैं, 163 करोड़ योजन, 163 कोड़ी योजन महा लाख चौरासी, 100,000 से 8वें द्वीप पर आप पहुंचे तो कितना करोड़ में चेंज हो गया वो 100,000, 163 करोड़, 46 डिजिट का वो कहां पर जाके रुक रहा है, जस्ट इमेजिन उसका एरिया क्या होगा। उतना बड़ा द्वीप है, उसमें वापस हमने सरसों भरी है, इसको वापस आगे जाना है, जहां पर हमारी जेब खत्म होगी वहां पर जो द्वीप आएगा उतना बड़ा फिर अन्वस्था कुंड पड़ेगा, और हम दूसरा दाना लाके शलाका कुंड में डाल देंगे, राइट। ऐसे आपको करते जाना है जब तक आपका शलाका कुंड नहीं भरे। शलाका कुंड में कितने दाने आएंगे, 46 संक्रमण, तो कितने अन्वस्था कुंड बनेंगे, 46 संक्रमण, यस है ना, आप चलते जाओगे। लेकिन अभी भी आप जिसको मध्य लोग बोलते हो 1/1 राजू का, उसमें असंख्या द्वीपों की संख्या शुरू नहीं हुई, इतने दूर तक चले जाने पर भी अभी द्वीप चल ही गए हैं काउंटेबल। आप समझो एक राजू कितना बड़ा होता है, आप एरिया को डबल करते जा रहे हो। आर यू इमेजिनिंग, आर यू एबल टू इमेजिन क्या बोल रहा हूं मैं,
becoming harder थोड़ा।
अभी तक हम असंख्यात तक कहीं नहीं आए हैं, और हमको जगन युक्त असंख्यात पहुंचना है, ये समझने के लिए कि एक आवली में हम इतने सारे कर्मों का बंध कर जाते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम हमारा बहुत हो गया, मैं यहाँ से स्ट्रेस करूंगा तो आपके दिमाग पर बहुत जोर जाएगा। डू यू वॉन्ट मी टू कम्प्लीट इट और वी कैन कंटिन्यू लेटर,
वी कैन कंटिन्यू लेटर।
आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं,
एक दफा हमें ये समझाया था पहले, एक दफा
हाँ बहुत पहले समझाया,
एक दफा वो पढ़ा था, फिर वो इट वॉज गेटिंग टू मच, फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ना.
उसमें लोग भावना पर ये है बट ये हमको समझना पड़ेगा कि हमको आश्रव एक समय में कितना सारा होता है और एक समय कितना छोटा और एक मिनट में हम कितना कर्म बंद कर लेते हैं, हमको पता नहीं पड़ता. हमको लगता है कि मेरा उपयोग थोड़ी देर के लिए तो इधर उधर गया था, तो थोड़ी देर में हमने कितना अपना दिमाग खराब कर दिया, कितना कर्म बांध लिया हम लोग. ठीक है, तो मे बी आफ्टर समर ब्रेक में ही हम लोग यहाँ आश्रव से ही स्टार्ट करेंगे तीसरी घाल को.
जो आठ गाथाएं पूरी हुई ना उसमें आश्रव तत्व भी चलता है, तो वो तो वापस कब आएंगे समर ब्रेक में से? सितंबर में? तो बाय दैट टाइम हमें कुछ प्रश्न वगैरह हो तो क्या करें? आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस कुछ है क्या?
पूछ सकते हैं या तो आप मुझे किसी दिन मेल करके बता दीजिए तो मैं उसे ऑनलाइन आ जाऊंगा आपकी जब बोलेंगे. मेरा समर ब्रेक नहीं है, आप लोग का है.
हमारा नहीं, बच्चों का है. हमें तो ब्रेक ब्रेक ही ब्रेक है हमारा.
वो अभी भी कहूँगा कि आप लोग डिस्कशन या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, सो वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं.
तो कैसे करें? डायरेक्ट कोई नंबर वगैरह हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं ना, और सचिन जी से पूछे.
તમારે ક્વેશ્ચન બિનો એવું કઈ હોય તો ઈમેલ કરી દેજો, વાંધો નહીં. હું અનુભવજીને ઈમેલ કરી દઈશ એવું હશે તો, અને નહીં તો આપણે બિનો જોશું બધા, જો અવેલેબલ હોય ને કઈ ક્વેશ્ચન ક્લેરિફિકેશન કરવા હોય નોટ કરીને બધા ક્વેશ્ચન, તો પછી આપણે વચ્ચે ક્યારેક એકાદ એક સેશન પણ એનો ટ્રાય કરીને રાખી દઈશું.
ઓકે, ધેટ્સ ગુડ.
નહીં તો પછી આપણે યુઝ્યુઅલી જે દર વર્ષે કરે છે એ સપ્ટેમ્બરમાં જ પાછું ચાલુ કરશું નેક્સ્ટ યરનું.
રાઈટ રાઈટ, યાર આમ તો સપ્ટેમ્બરમાં સ્કૂલ ઓપન થાય ને છોકરાઓને.
ઓકે ચલો, ઠીક હૈ, તો જિનમાની સ્તુતિ કરતે હૈ. આપિચા પાણી કે જ્ઞાન પે તુજે લોકાનો તો વાણી મર સકે નહીં સદા કે સહી. ભગવાન